समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30 और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास कुछ खास, और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी नजर। और आज हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं आज मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार मुनीश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एंड एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ परिक्रमा, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट देश के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनीश ये त्योहार जो है ना, द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, किसी न किसी रंग में, किसी न किसी नाम से, किसी न किसी रूप से, ट्रेडिशन से बनाए जा रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। जैसी की सदियों से, बरसों से, युगों से जो परंपरा है उसे सब लोग बहुत प्यार से निभा रहे हैं।
That's right. We take so much from our Mother Earth. So I think these festivals are just a symbolic gratitude to Mother Nature and thanking her for, you know, blessing us with boundless harvest, and you know, even change of seasons is such a boon. अगर आप ये सोचिए एक महीने ऊपर हो जाए सर्दी तो कितना विचलित हो जाए, और अगर एक महीने ऊपर हो जाए गर्मी तो इंसान कितना विचलित हो जाए, isn't it?
जी हाँ बिल्कुल। और आज से सूर्य चले हैं उत्तर दिशा में, तो उत्तरायणी के नाम से भी ये पर्व देश के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है।
Yes, and people celebrate it by flying kites in many regions. और खासतौर से ये वक्त जो होता है जब सर्दी अपना दम तोड़ रही होती है, गर्मी की आमद शुरू होने वाली होती है, यू कैन से यू नो देयर इज अ हिंट ऑफ समर्स इन द एयर नाउ, एंड दैट्स द परफेक्ट टाइम टू फ्लाई काइट्स, इजंट इट?
जी हाँ बिल्कुल। और ये उस पंक्ति को भी तो चरितार्थ करती है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड।
It's not behind, it's just right round the corner.
Yes, it is, and on the yes, doorstep.
And even though we have a very brief spring, Monish, nonetheless we do have it, and especially Kashmir mein to khair kaafi lamba spring chalta hai, but nonetheless even in our country, in different parts, I think people are relishing this weather and what it brings. So a very very happy Makar Sankranti and all the festivals that people are celebrating, Pongal, Bihu, Uttarayan and many others. On that note, let's start today's show. परिक्रमा हजबी दस्तूर लाए हैं हम आपके लिए ताजा तरीन खबरें, ऑफकोर्स, एंड विल डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री। इसीलिए तो नाम रखा है हम लोग ने न्यूज मैगजीन का परिक्रमा, बिकॉज देर आर सो मेनी सॉफ्ट स्टोरीज दैट डोंट बिकम पार्ट ऑफ द मेजर बुलेटिन, येट दे आर वर्थ शेयरिंग विद आर लिसनर्स। सो दैट्स वाई विल गो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आर कंट्री वेर आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर स्टेशन एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग न्यूज दे हैव। एंड बाकी भी बहुत चीजें होंगी, एक बहुत अजीम शायर को भी हम लोग याद करेंगे, और अगर हमारे साथ आज मोनीश हैं तो वो अपनी आवाज में भी उन शायर के कुछ कलाम पढ़े। Isn't it?
जी हाँ बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूँ, और इसीलिए अब जल्दी से आगे बढ़ा जाए हेडलाइंस की तरफ।
Prime Minister Narendra Modi lauds farmers' contribution for nation building, says they are strengthening self-reliant India.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ और सामूहिक साहस के प्रतीक।
China reaffirms its support for Iran's stability, rejects US interference in internal affairs of sovereign states.
और थाईलैंड में रेल दुर्घटना में 22 लोगों की मौत और 30 लोग हुए घायल।
And now we start our show Parikrama, and as usual we throw open the show with a very special segment called Dateline India. And kyunki bhai jaise hum log ne shuruaat mein kaha Monish ki harvest festivals manaye ja rahe hain, so that's why the main focus today in Dateline India is all these harvest festivals. The airwaves are filled with festive warmth, cultural pride and stories from every corner of the country as India celebrates Pongal, Makar Sankranti, Uttarayan, Magh Bihu and Bhogi. Festivals that honor nature, harvest and our hard-working farmers. Let's begin from southern India. Prime Minister Narendra Modi has called India's farmers the strong partners in nation building, saying that their dedication is powering the dream of a self-reliant India. addressing a Pongal celebration at the residence of Union Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, the Prime Minister said that the centre is fully committed to empowering the farmers.
हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है. इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है. मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं. साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है. तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है.
उन्होंने पोंगल को एक ऐसा त्योहार बताया जो प्रकृति, परिवार और समाज के बीच संतुलन को सिखाता है. प्रधानमंत्री ने तमिल संस्कृति की जीवंत भावना का जश्न मनाते हुए कहा कि पोंगल अब सिर्फ एक क्षेत्रीय त्योहार नहीं रह गया है, बल्कि किसानों की मेहनत का एक वैश्विक उत्सव बन चुका है. उन्होंने ये भी कहा कि तमिल संस्कृति न केवल भारत की साझा विरासत है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उपहार है, जहां किसानों को जीवन का आधार माना जाता है.
Now let's travel to the sacred hills of Sabarimala in Kerala. Atmosphere there is charged with devotion as thousands of pilgrims have gathered to witness the grand Makaravilakku festival. The celebrations coincide with the holy Makara Sankram night. Rituals are underway, including the grand procession carrying the Tiruvbharanam, the sacred ornaments of Lord Ayyappa. For the Makara Sankram puja, the devotees eagerly await the divine appearance of the Makaravilakku this evening. With strict crowd regulations in place, only 35,000 pilgrims are allowed today, ensuring safety and order amid the spiritual fervor.
Mahile manjula mani vilakke magara vilakke vilakke magara vilakke magara vilakke malayile divya mani vilakke mahile man.
सूर्य के उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मकर संक्रांति, उत्तरायण और माघ बिहू के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने सभी के लिए सुख, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए कहा है कि ये पवित्र त्योहार एकता को मजबूत करते हैं और समृद्धि और सकारात्मकता लेकर आते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि माघ बिहू फसल प्रचुरता और एकता का उत्सव है जो देश को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करता है.
That's right, Monish, and we have covered, largely two states, and now we head ke Tamil Nadu mein kya chal raha hai. Let's see where today marks the celebration of the Bhogi festival that bids farewell to the old and welcomes the new. Homes are being cleaned, whitewashed, and decorated with vibrant rangolis. In morning, children were seen joyfully beating small drums and walking around bonfires, symbolizing the discarding of the past. Toh agar aap dekhiye, Monish, ke in त्योहारों में कितना सिंबॉलिक चीजें भी होती हैं कि डोंट होल्ड ऑन टू द पास्ट.
जी हाँ, बिल्कुल. जब मौसम बदलता है तो मिजाज बदलता है और हमें खुद को भी बदलना चाहिए.
बिल्कुल, बिकॉज द ओनली कॉन्स्टेंट is change. However, with care for the environment in mind, the State Pollution Control Board has urged people not to burn plastics, tyres or rubber. Air quality is being closely monitored across the state. So, ye bhi bahut zaruri hai, Monish, because kai baar hum log bhaavon mein itna beh jaate hain that we forget even the responsibility that we have towards nature. So, I think true gratitude lies in caring for the nature and not just being happy about it, but we should care for it as well. In Chennai, visibility dropped to 300 meters due to the bonfire smoke, though it is expected to improve as the day progresses. And in villages, bonfires made of hay light up agricultural fields, mango leaf festoons adorn homes, and colorful rangoli competitions add to the festive charm as people prepare to welcome the Tamil month of Thai, marking the arrival of spring.
जी हाँ सायरा, और ये भी बताते चलें अपने श्रोताओं को कि पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। श्रद्धालु नदियों और तालाबों में पवित्र पुण्य स्नान कर रहे हैं। वहीं घरों में चावल के आटे, नारियल गुड़ और खीर से बनी पारंपरिक मिठाइयों की खुशबू फैली है। प्रतिष्ठित गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालु देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं।
That's right. और आपने जैसे जैसे कहा कि गुड़ और नारियल, ये सब सुन के ही मुंह में पानी सा आने लगता है, बिकॉज दिस इज आई थिंक द परफेक्ट टाइम ऑफ द ईयर टू हैव दीज डेलिकेसीज। एंड क्यों ना एक खूबसूरत सा गाना भी सुना जाए। And if we head towards Uttar Pradesh, Mohanish, the banks of rivers are alive with devotion as thousands take the sacred dip on Makar Sankranti. The state government has put in place elaborate safety and security arrangements to ensure a smooth and peaceful celebration. From harvest fields to holy rivers, from bonfires to temple bells, India today celebrates gratitude, renewal and unity.
और सायरा, जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गुजरात में उत्तरायण का त्योहार बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। और गुजरात में यह त्योहार दोस्तों रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर मनाया जाता है। उत्तरायण के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, अहमदाबाद के ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री शाह बाद में अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ पतंग उत्सव में शामिल होंगे। करुणा अभियान के तहत राज्य सरकार ने मकर संक्रांति से पहले घायल पक्षियों को बचाने के लिए 8,500 कर्मियों को तैनात किया है। विश्वभर के पतंग प्रेमी राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सवों में भाग लेने के लिए गुजरात पहुंच रहे हैं।
दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए।
And yes, here's wishing everyone joy, prosperity and a very, very blessed festive season that's filled with hope.
जी हाँ दोस्तों, और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि क्या है उनके पास हमारे लिए खास।
तो इस सिलसिले में मोनीश, सबसे पहले हम लोग कहाँ चल रहे हैं?
इस सिलसिले में हम सबसे पहले चलते हैं देहरादून। मकर संक्रांति के साथ ही उत्तराखंड में लोक पर्वों, मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों की रौनक शुरू हो जाती है। गंगा के पावन तटों से लेकर पर्वतों के दूर दराज के गांवों तक आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति का एक अद्भुत संगम देखने को वहां मिलता है। कहीं गंगा स्नान की पवित्रता है तो कहीं मेलों की चहल पहल, तो कहीं बच्चों की खिलखिलाहट के बीच गूंजती घुघुतिया की मधुर पुकार। जी हाँ, मकर संक्रांति उत्तराखंड में सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि यहाँ के लोक जीवन की जीवंत तस्वीर है। इसी सांस्कृतिक उल्लास और परंपराओं से जुड़े माहौल के बारे में और विस्तार से बता रही हमारी संवाददाता साक्षी सिंह।
मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज उत्तराखंड के गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और सुबह की गंगा आरती में बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं उत्तरकाशी जिले में भी श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। उत्तरकाशी में मकर संक्रांति के साथ ही पौराणिक और ऐतिहासिक माघ मेले का शुभारंभ भी हो गया। 8 दिनों तक चलने वाला यह मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है, जबकि इतिहास में यह भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। कुमाऊं अंचल में भी मकर संक्रांति और त्रयायनी पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उधम सिंह नगर के खटीमा में आयोजित उत्तरायणी कौथिक का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी अपने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ती है और ये परंपराओं को जीवित रखने का सशक्त माध्यम बनते हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
So well, Monish, I'm sure the listeners were quite inspired to probably head to Dehradun, خاص طور سے جو دلی میں رہتے ہیں اور آپ بھی گھومنے کے اتنے شوقین ہیں تو ہمیں لگ رہا تھا کہیں آپ بھی تو ایسا نہیں سوچ رہے کہ ویکینڈ پہ دہرادون کی طرف رخ کیا جائے۔
دلا دیا آپ نے، دیکھیے دہرادون بالکل ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے اور چونکہ بہت نزدیک بھی تو ہے دلی۔
رائٹ، ایبسلیوٹلی۔ اب تھوڑا سا دور چلتے ہیں دلی سے، وی ہیڈ ٹوورڈز ممبئی۔ دا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی ہیز بگن پریپریشنز فار اٹس اپ کمنگ انٹرنیشنل کانفرنس 2026، مارکنگ اے کی اکیڈمک ایونٹ ایز دی انسٹیٹیوٹ کمپلیٹس 40 ایئرز۔ لیٹس ہیئر مور فرام آور ممبئی کورسپونڈنٹ۔
As part of its NIFT at 40 celebrations, the National Institute of Fashion Technology will host the NIFT International Conference 2026 on 22nd and 23rd of this month at its Mumbai campus. Conceived as the final major academic program of NIFT's 40th foundation year, the conference will bring together academicians, design professionals, researchers, students and alumni from India and abroad. The theme Design for Inclusive Futures will focus on four key areas, namely accessibility, usability, ethics and equity. Highlighting the vision of the conference, Professor Dr. Rupa Agarwal, conference chair, said the theme reflects NIFT's commitment to inclusive and responsible design.
NIFT is celebrating 40 years of its eventful journey. On the foundation day, 22nd January 2026, NIFT is inaugurating an international conference titled Design for Inclusive Futures. It is a two-day conference which will be attended by design fraternity, academia, industry, policy makers, and alumni. The four main tracks of the conference are accessibility, ethics, equity, and usability, and several themes under it. The conference has a packed schedule with peer-reviewed paper presentations, keynote addresses by notable figures in the field, riveting panel discussions, workshops, and exhibitions. We look at the conference not as an end in itself, but as a beginning of a dialogue reflecting on the future.
The conference will feature peer-reviewed research presentations, keynote sessions, and interdisciplinary discussions. It also underscores NIFT's growing role beyond fashion education, with a focus on inclusive design, sustainability, and socially responsive innovation, marking four decades of its contribution to design education and research. Sweety Jain for Parikrama from Mumbai.
And so Monish from Mumbai, بہت ہی قریب میں ہے پونے سٹی، آپ بتائیے وہاں پہ شاید ایک ٹیکاتھون شروع ہونے والا ہے۔
جی ہاں، بات کرتے ہیں وہاں کی سنواددتا سے، وہ ہمیں بتائیں گی وستار سے، جہاں کالج اسٹوڈینٹس کے بیچ نئے آئیڈیا کو بڑھاوا دینے اور ان کی انٹرپرینورشپ کو سپورٹ کرنے کے مقصد سے انوویشن فاؤنڈیشن نے 21 اور 22 فروری 2026 کو ایک راشٹر استریہ ہیکاتھون انوویٹ یو ٹیکاتھون 3.0 پونے میں آیوجت کیا ہے۔ اس کمپٹیشن کے ذریعے ٹیکنالوجی کی مدد سے ساماجک سمسیاؤں کا حل ڈھونڈنے اور سماج کے سامنے حل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور سنتے ہیں ہم اپنی سمباددتا کی رپورٹ۔
اس ہیکاتھون کا یہ تیسرا سال ہے اور ہر سال یہ کمپٹیشن بڑے لیول پر آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ پچھلے سال دیش کے جانے مانے انجینئرنگ کالجوں سمیت الگ الگ پروفیشنل کورس کی 400 سے زیادہ ٹیموں نے ہیکاتھون میں حصہ لیا تھا۔ اس پہل کو ساوتری بائی پھلے پونے یونیورسٹی، آل انڈیا کاؤنسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن، ڈائریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، مہاراشٹر پولوشن کنٹرول بورڈ IDTR، رتن ٹاٹا مہاراشٹر اسٹیٹ اسکل یونیورسٹی، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور COEP یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پونے ان سے سپورٹ ملا ہے۔ ہیکاتھون کے لیے ایجوٹیک، پریاورن، سواستھ سیوا، یاتایات پربندھن، آپدا پربندھن اور کرشی تنتر جیسے وشیوں پر سمسیائیں دی جائیں گی اور ودیارتھیوں کو دیے گئے سمے میں تنتر کے آدھار پر اپائے وکسیت کرنے ہوں گے۔ انجینئرنگ، پالی ٹیکنک، BCA، MCA، BTEC، ایگری آدی پاٹیہ کرموں کے ودیارتھی 3 سے 4 کے سموہ میں اس ہیکاتھون میں حصہ हिस्सा ले सकते हैं। हैकेथॉन में जीतने वाली टीमों को उनके प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए फाउंडेशन की तरफ से जरूरी मदद दी जाएगी और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के लिए बूट कैंप और स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। हैकेथॉन के विजेताओं को लाखों रूपये के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे और सबसे इनोवेटिव और समाज के लिए उपयोगी प्रोजेक्ट को इनोवेशन अवार्ड दिया जाएगा। इसी तरह AI टेक्नोलॉजी का असरदार और क्रिएटिव इस्तेमाल करने वाले प्रोजेक्ट को खास इनाम दिए जाएंगे। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
तो सारा भाई, देखिए सब जानते हैं आपके दोस्त और हम भी की साहिलों से और समंदर से आपको बहुत लगाव है, तो क्यों ना आप ले चली हमें एक ऐसे शहर जहाँ साहिल है, समंदर है, लहरें हैं, क्या हो रहा है वहाँ?
क्या याद दिला दी आपने मोहनीश। वापस हम लोग दिल्ली में ही फिलहाल आते हैं, लेकिन बात करेंगे द वाइब्रेंट पोर्ट सिटी ऑफ विशाखापट्टनम के बारे में। वेल, इट स्पार्कल्ड विद एनर्जी एज इट होस्टेड द लाइट हाउस फेस्टिवल। लाइट हाउस भी अपने आप में कितना तजस्सुस, कितनी मिस्ट्री और कितना किनसे एक एनिग्मा से भरे होते हैं, इजंट इट?
इंडीड,
यस। सो द लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 वाज होस्टेड ऑन 9th एंड 10th ऑफ जनवरी। The two-day cultural celebration held at MGM Park along the Bay of Bengal was organized under the Union Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Known for its natural harbor, beaches and beautiful scenic beauty, Visakhapatnam offers something for everyone, and it celebrates lighthouses as symbols of guidance, safety and coastal heritage. Let's hear more from our correspondent.
Held along the scenic bridgefront, the Lighthouse Festival drew large crowds from across the city and beyond. Visitors enjoyed colorful cultural performances, folk dances, music concerts, and engaging theater shows that reflected India's rich coastal traditions. Food stalls offering local delicacies along with handicraft and self-help group exhibitions added flavor and vibrancy to the event. The illuminated lighthouse and artistic lighting transformed the shoreline into a glowing spectacle, creating a festive atmosphere that delighted families, tourists, and children alike. The event was inaugurated by former Vice President M. Venkaiah Naidu and Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal, who praised the city's spirited participation and stressed the growing importance of lighthouse tourism. Addressing the Lighthouse Festival 3.0, Union Minister Sarbananda Sonowal said,
"This festival reflects the spirit of Jan Bhagidari, where citizens, artists, youth and local communities come together to celebrate our coastal identity. India's diversity through culture, food, cruising, craft, fashion and illumination and repair, sea recycling, seafarer, port capacity and operational efficiency."
The Lighthouse Festival not only entertained the public but also highlighted the importance of lighthouse tourism and maritime culture. As the festival concluded, officials announced plans for Andhra Pradesh's first lighthouse museum in Visakhapatnam, underlying the city's emerging role as a hub for heritage tourism. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News, Visakhapatnam.
और दोस्तों, अब चलते हैं सायरा के साथ खेल के मैदान की तरफ और जानते हैं क्या है वहां के हालचाल और क्या है हलचल।
Right, Monish. In men's cricket, host India were 256 for 6 in 47.1 overs against New Zealand in the second ODI of the three-match series in Rajkot when reports last came in. And some business news. Well, benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty, ended around 0.3% lower today. Well, Sensex fell 245 points to close at 83,383, while Nifty dropped 67 points to settle at 25,666.
और दोस्तों, अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और महान व्यक्तित्वों को जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
We remember revolutionary freedom fighter Masai Manjuran, who died on the 14th of January 1970. A dynamic trade union leader, Mathai was jailed for months for taking part in the Kisan Labour movement soon after his graduation in 1933. Later, he was imprisoned several times during the freedom struggle when he formed the Kerala Socialist Party.
He also became a member of the Rajya Sabha in 1952. In 1967, he became Minister of Labour and held the portfolio for 2 years. He continued working for the welfare of people till his death in January 1970.
We also remember eminent writer Mahashweta Devi, who was born on the 14th of January 1926.
Yes, talking about Mahashweta Devi, a very renowned, accomplished Bengali writer and activist. Her notable literary works include Hazar Chaurasi Ki Ma, Rudali and Aranya Radhikar. Well, she worked for the rights and empowerment of the tribals of West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. She was honored with various literary awards such as the Sahitya Akademi Award, Gyanpeeth Award and even Ramon Magsaysay Award, along with India's highest, you can say not highest, but Padma Shri and Padma Vibhushan Awards as well.
And friends, today is Punyatithi Edmund Halley ki, jinki mrityu hui thi 14 January 1742 ko Greenwich, लंदन के पास. एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने सबसे पहले धूमकेतु की कक्षा की गणना की, जिसका नाम बाद में उन्हीं के नाम पर रखा गया. आपने सुना होगा हेलीस कॉमेट. और उन्हें आइजक न्यूटन की पुस्तक फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका के प्रकाशन में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है. हेली में बड़ी मात्रा में डेटा को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने की एक अद्भुत क्षमता थी. 1686 में महासागरों पर चलने वाली हवाओं के वितरण को दर्शाने वाला उनका दुनिया का मानचित्र एक ऐसा पहला मानचित्र था.
And now in the beginning of the show, Monish, we talked about that we'll be remembering one great Urdu poet, ek azim shayar ko hum log yaad karenge. Aur kyun na aap us shayar ke bare mein kuch bataiye.
Ji haan, bilkul. Aaj jayanti hai mashhoor shayar कैफी आजमी साहब की, और जिनका असल नाम था दरअसल अख्तर हुसैन रिजवी. 11 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गजल कह दी और किशोर होते होते मुशायरे में पढ़ने लगे, और उन्हें फिर बाद में तो राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, और 1974 में भारत की सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया. गीतकार, लेखक और अभिनेता के रूप में भी जाने गए. इप्टा से बड़े लंबे समय तक वो जुड़े रहे और जन जागृति के बहुत से कार्यों के साथ उनका जो है लगाव वो हमेशा बना रहा. तो याद आता है आपको कुछ सायरा जो उनका कहा, कुछ लिखा, कुछ?
Well, I think most of the poets and artists and even everyone, we try to analyze ki zindagi aakhir hai kya. Bahut se shairon ne, bahut se poets ne, kaviyon ne kitna zyada keh sakte hain magaz apna kharch kiya hai aur kafi azibi usse jo hai mehroom nahi rahe the. Ek bahut hi khoobsurat si nazm hai unki, zindagi naam hai kuch lamhon ka aur unme bhi wahi ek lamha जिसमें दो बोलती आंखें चाय की प्याली से जब उठी तो दिल में डूबी, डूब के दिल में कहीं आज तुम कुछ ना कहो, आज मैं कुछ ना कहूं, बस यूं ही बैठे रहो, हाथ में हाथ लिए गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए, कौन जाने कि उसी लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने लगे.
वाह. और मुझे तो हमेशा याद आती है उनकी वो नज्म, जब भी जिक्र होता है उनका, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, कि कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी. ये जमीन तब भी निगल लेने को आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, इन मकानों को खबर है, नमकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने. और सायरा, बहुत सी फिल्मों के बड़े यादगार गीत उन्होंने लिखे, तो आइए अब सुनते हैं कि ऐसा ही गीत उनका जो हमारे श्रोता जरूर जानते भी होंगे और मैं समझता हूं कि साथ में गुनगुनाने को मजबूर भी हो जाएंगे. और वो फिल्म है मैं हूं, मैं आजाद हूं. यस, प्रिसाइजली, मैं आजाद हूं. जी 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 जी.
हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा. हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे.
तो सायरा भाई, हकीकत तो यह है कि ये गाना फिल्म हकीकत से है दरअसल. हाँ. तो जो हमने पहले सुनवा दिया, और अब सुनते हैं वो गीत जिसका जिक्र हमने किया था फिल्म मैं आजाद हूं से.
इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन जान से. इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन जान से. हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम भी जान से. हारेगा
سے.
اور ظاہر اب وقت ہو چلا ہے اپنے شروتاؤں سے انومتی لینے کا, تو دوستو اجازت دیجئے مجھے یعنی منیش شرما اور سائرہ کو پریکرما کارکرم یہیں پر سماپت کرنے کی. اگر آپ ہمیں دوبارہ سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر. آپ ہمیں اپنی پرتکریائیں ضرور بھیجئے اور دیجئے اجازت.
نمسکار.